नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। गाय हार्ट डेविस की टीच योर सेल्फ विजुअली मैकबुक प्रो एंड मैकबुक एयर एक चित्र प्रधान कार्य आधारित तकनीकी मार्गदर्शिका है। यह उपन्यास या विचार प्रधान पुस्तक नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए संदर्भ पुस्तक है जो मैकबुक का उपयोग देखकर और तुरंत दोहराकर सीखना चाहते हैं। इसका केंद्र मैकबुक प्रो या मैकबुक एयर का हार्डवेयर खोलना भर नहीं है, बल्कि मैकओएस इंटरफेस, उसकी अंतर्निहित एप्स, फाइल प्रबंधन, इंटरनेट सेवाओं और एप्पल उपकरणों के बीच तालमेल है। पुस्तक छोटे पाठों में काम को बांटती है, जिनमें रंगीन स्क्रीनशॉट और संक्षिप्त निर्देश साथ चलते हैं, इसलिए पाठक लंबे तकनीकी विवरण में उलझे बिना किसी खास काम तक सीधे पहुंच सकता है। हार्ट डेविस का उद्देश्य शुरुआती उपयोगकर्ता को बुनियादी आत्मविश्वास देना और अनुभवी उपयोगकर्ता को कम इस्तेमाल होने वाली सेटिंग्स तथा सुविधाओं का व्यावहारिक संदर्भ उपलब्ध कराना है। इसकी उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि पाठक का मैकओएस संस्करण पुस्तक के संस्करण से कितना मिलता है, क्योंकि एप्पल समय के साथ मेनू और स्क्रीन बदलता रहता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, स्क्रीनशॉट आधारित पाठ मैकओएस सीखने की बाधा कम करते हैं। इस पुस्तक की मुख्य पद्धति दृश्य संकेतों को निर्देश का केंद्र बनाना है। प्रत्येक छोटा पाठ सामान्यतः एक काम पर केंद्रित रहता है, जैसे किसी सेटिंग तक पहुंचना, फाइल संभालना या ऐप में जानकारी जोड़ना। स्क्रीनशॉट के साथ संकेतित चरण पाठक को केवल यह नहीं बताते कि क्या चुनना है, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि वह विकल्प स्क्रीन पर कहां मिलेगा। मैकओएस में कई कार्य मेनू, साइड बार, कंट्रोल सेंटर, फाइंडर विंडो और सिस्टम सेटिंग्स के बीच फैले होते हैं। केवल पाठ आधारित निर्देशों में नाम पहचानने या सही आइकन खोजने की अतिरिक्त कठिनाई हो सकती है। दृश्य प्रस्तुति इस खोज लागत को घटाती है। दो पृष्ठों के संक्षिप्त पाठ भी उपयोगी है, क्योंकि पाठक को पूरे अध्याय का क्रम मानने की जरूरत नहीं होती। वह अपनी तत्काल समस्या के अनुरूप पाठ खोल सकता है। यह ढांचा खासकर नए मैक उपयोगकर्ताओं, विंडोज से आए लोगों और उन पाठकों के अनुकूल है जो प्रयोग करते समय किताब को साथ रखते हैं। फिर भी स्क्रीनशॉट की सीमा भी है। मैकओएस अपडेट के बाद बटन का स्थान, नाम या रूप बदल सकता है, इसलिए पुस्तक को सिद्धांत की अंतिम व्याख्या के बजाय दृश्य मार्गदर्शन और कार्यशील संदर्भ के रूप में पढ़ना अधिक उचित है। दूसरा, डेस्कटॉप फाइंडर और सेटिंग्स को व्यक्तिगत कार्यप्रवाह के अनुसार ढालना पुस्तक मैकबुक को डिफॉल्ट स्थिति में चलाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसे उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुरूप व्यवस्थित करने पर जोर देती है। इसमें मैकओएस इंटरफेस में चलना, डेस्कटॉप को अनुकूलित करना और जरूरी विकल्पों को अपनी पसंद के हिसाब से बदलना शामिल है। यह विषय व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोजमर्रा की दक्षता अक्सर उसी पर निर्भर करती है कि फाइलें कितनी आसानी से मिलती है, विंडो कैसे संभाली जाती है और बार बार उपयोग होने वाले नियंत्रण कितनी जल्दी उपलब्ध होते हैं। फाइंडर के माध्यम से फोल्डर, दस्तावेज और अन्य सामग्री का प्रबंधन मैक उपयोग की बुनियाद है। पुस्तक का कार्य आधारित ढंग पाठक को एक समय में एक बदलाव समझने देता है, जिससे गलती होने पर उसे वापस लेना भी आसान होता है। अनुकूलन का उद्देश्य दिखावटी निजीकरण नहीं, बल्कि कम दोहराव और बेहतर पहुंच है। उदाहरण के लिए, डेस्कटॉप पर उपयोगी विजेट, पसंदीदा स्थानों तक तेज पहुंच और ऐप सेटिंग्स का सोच समझकर उपयोग सूचना खोजने में लगने वाला समय घटा सकते हैं। साथ ही पुस्तक यह दृष्टि देती है कि मैकओएस की कई सुविधाएं आपस में जुड़ी हैं। किसी ऐप की सूचना, खाते की सेटिंग और डेस्कटॉप पर दिखने वाली सामग्री अलग अलग विकल्प नहीं, बल्कि एक ही कार्य परिवेश के हिस्से हैं। तीसरा, iCloud, iPhone और iPad के साथ Apple पारिस्थितिकी तंत्र का समन्वय। मैकबुक की उपयोगिता केवल स्थानीय फाइलों और ऐप्स तक सीमित नहीं रहती। पुस्तक iCloud खाते तथा iPhone और iPad के साथ मैकबुक को जोड़ने को महत्वपूर्ण विषय मानती है। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि संपर्क, कैलेंडर, नोट्स, रिमाइंडर और अन्य चुनी हुई जानकारी अलग अलग उपकरणों पर उपलब्ध रह सकती है। यह समन्वय उपयोगकर्ता को एक उपकरण पर शुरू किया काम दूसरे पर जारी रखने और महत्वपूर्ण निजी जानकारी को बार बार हाथ से दर्ज करने से बचाने में मदद करता है। पुस्तक का योगदान यह तकनीकी अवधारणाओं की लंबी चर्चा नहीं, बल्कि खाते और सेवाओं को काम में लेने के चरण स्पष्ट करना है। यह दृष्टिकोण उन पाठकों के लिए उपयोगी है जिनके पास पहले से आईफोन है, पर वे मैकबुक को उसी डिजिटल व्यवस्था में शामिल करना नहीं जानते। फिर भी समन्वय को बिना सोचे समझे चालू कर देना उचित नहीं है। कौन सा डेटा साझा होगा, किस खाते में रहेगा और कौन सी सूचनाएं उपकरण पर दिखाई देंगी, ये उपयोगकर्ता के गोपनीयता और सुविधा संबंधी निर्णय है। पुस्तक की सेटिंग्स केंद्रित शैली ऐसे विकल्पों तक पहुंचना आसान बनाती है। पाठक सीखता है कि एप्पल पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ तभी स्पष्ट होता है जब उपकरणों के बीच डेटा प्रवाह को अपनी वास्तविक जरूरत के अनुसार नियंत्रित किया जाए। चौथा, कैलेंडर, संपर्क, नोट्स और संदेशों से रोजमर्रा की डिजिटल व्यवस्था बनाना। पुस्तक मैकOS को केवल कंप्यूटर चलाने का माध्यम नहीं बल्कि दैनिक संगठन और संचार का उपकरण मानती है। इसमें कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, रिमाइंडर्स, नोट्स और मैप्स जैसी एप्स के उपयोग के साथ ईमेल, मैसेजिंग, चैट और कॉलिंग जैसे कार्य शामिल है। इन विषयों को एक साथ देखना जरूरी है क्योंकि इनका लाभ अलग अलग फीचर जानने से अधिक साझा जानकारी के उपयोग में है। उदाहरण के लिए, किसी संपर्क के विवरण से संवाद शुरू करना, कैलेंडर में कार्यक्रम रखना, रिमाइंडर से काम याद रखना और नोट्स में संबंधित सूचना सहेजना एक जुड़े हुए कार्यप्रवाह का हिस्सा हो सकता है। दृश्य पाठों की पद्धति ऐसे उपयोगकर्ताओं को सहायता देती है जो स्मार्टफोन पर इन ऐप्स का सीमित प्रयोग कर चुके हैं लेकिन मैक के बड़े स्क्रीन और अलग नियंत्रणों पर उन्हें अपनाना चाहते हैं। पुस्तक यह भी संकेत करती है कि डिफॉल्ट ऐप्स आरंभिक जरूरतों के लिए पर्याप्त हो सकती है, इसलिए हर काम के लिए तुरंत अलग सॉफ्टवेयर खोजने की आवश्यकता नहीं। हालांकि ऐप्स की उन्नत सुविधाएं और सेवा उपलब्धता संस्करण तथा क्षेत्र के साथ बदल सकती है। पाठक को पुस्तक के चरणों को अपने सिस्टम की वर्तमान स्क्रीन से मिलाकर अपनाना चाहिए। इसका मुख्य लाभ व्यवस्थित दोहराए जा सकने वाले रोजमर्रा के कामों की समझ है। अंत में अपडेट, स्ट्रीमिंग और समस्या निवारण को सामान्य उपयोग का हिस्सा मानना तकनीकी मार्गदर्शिकाओं में अक्सर शुरुआती सेटअप पर अधिक ध्यान रहता है जबकि लंबे समय तक उपयोग के लिए रखरखाव उतना ही जरूरी है। यह पुस्तक मैकबुक को अपडेट करने, सामान्य दिक्कतों को समझने और संगीत, वीडियो तथा अन्य मीडिया स्ट्रीम करने जैसे विषयों को शामिल करती है। यह समावेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी उपकरण की वास्तविक उपयोगिता केवल नई सुविधाएं सीखने से नहीं बल्कि समस्या आने पर सही शुरुआती कदम पहचानने से तय होती है। अपडेट नई क्षमताएं, सुरक्षा सुधार और अनुकूलता ला सकते हैं पर वे इंटरफेस में बदलाव भी ला सकते हैं। इसलिए उपयोगकर्ता को अपडेट को एक बटन दबाने की घटना नहीं बल्कि अपने कार्य परिवेश में परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए। समस्या निवारण संबंधी पाठ संभवतः हर जटिल खराबी का समाधान नहीं देते लेकिन वे बुनियादी जांच की आदत विकसित करते हैं, जैसे सही सेटिंग देखना, कनेक्शन की स्थिति जांचना और आवश्यक सहायता तक पहुंचना। मीडिया और संचार सुविधाओं का शामिल होना भी दिखाता है कि मैकबुक काम, निजी व्यवस्था और मनोरंजन का संयुक्त उपकरण है। यह पुस्तक विशेषज्ञ मरम्मत मैनुअल नहीं है। हार्डवेयर की विस्तृत निदान या पुर्जों की मरम्मत जानने वालों को अलग स्रोत चाहिए होंगे लेकिन सामान्य उपयोगकर्ता के लिए यह रोजमर्रा की रुकावटों से निपटने का सुलभ प्रारंभिक ढांचा देती है। निष्कर्ष में, टीच योरसेल्फ विजुअली मैकबुक प्रो एंड मैकबुक एयर उन नए या मध्यम अनुभव वाले मैकबुक उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त हैं जो दृश्य निर्देशों के साथ सीखना पसंद करते हैं, विशेष रूप से आईफोन या आईपैड उपयोगकर्ता जो पहली बार मैकबुक को अपनी डिजिटल दिनचर्या में जोड़ रहे हैं, इससे लाभ ले सकते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह मैकOS के अलग अलग हिस्सों को तुरंत किए जा सकने वाले कार्यों में बदलती है। डेस्कटॉप अनुकूलन, फाइलों की व्यवस्था, आईक्लाउड समन्वय, संचार ऐप्स, व्यक्तिगत संगठन और सामान्य समस्या निवारण जैसे विषय एक ही संदर्भ में मिलते हैं। इससे पाठक को हर छोटी जरूरत के लिए असंगत ऑनलाइन वीडियो खोजने की आवश्यकता कम हो सकती है। इसी श्रेणी की कई पुस्तकों से इसका अंतर इसकी प्रस्तुति में है। जहां विस्तृत मैनुअल अवधारणाओं और विकल्पों की लंबी व्याख्या देते हैं, वहां यह पुस्तक स्क्रीनशॉट, छोटे पाठ और क्रमवार क्रियाओं को प्राथमिकता देती है। यह शैली तेज संदर्भ के लिए प्रभावी है पर उन्नत तकनीकी कारणों, गहरी सिस्टम प्रशासन क्षमता या मैकबुक हार्डवेयर की विस्तृत जानकारी के लिए पर्याप्त नहीं मानी जानी चाहिए। शीर्षक में मैकबुक प्रो और मैकबुक एयर होने पर भी इसका मुख्य जोर मैकOS सॉफ्टवेयर अनुभव पर है। संस्करण के साथ स्क्रीन बदलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए इसे वर्तमान एप्पल सहायता सामग्री के पूरक की तरह उपयोग करना समझदारी होगी। फिर भी स्पष्ट दृश्य मार्गदर्शन और रोजमर्रा के कामों की व्यापकता इसे आरंभिक मैकबुक सीखने के लिए उपयोगी बनाती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं गाइहार्ट डेविस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।